मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं सुशासन सूचकांक के माध्यम से गुड गवर्नेंस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। और दूसरी खबरों की संख्या आज पर्याप्त है। आपने महसूस किया होगा कि अब थोड़ी सी एक नई बात की मैंने शुरुआत की है कि जब मैं खबरों की बातें करता हूं तो मेरी कोशिश यह होती है कि ये खबरें इंपॉर्टेंट क्यों हैं मैं यह भी बताता चलूं, ताकि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, आप जान सकें कि कौन कौन सी घटनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, खुद आप जान सकें बिना किसी के बताए, चाहे मैं ही क्यों न हूं। एक खबर छपी थी शनिवार के अखबार में चीन और भारत के व्यापार को लेकर। अगर आप 2021 का प्री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें भारत का जो ट्रेड बैलेंस है, जो टोटल व्यापार है विश्व के साथ, उससे संबंधित एक प्रश्न आया था। खबर छपी चीन और भारत के व्यापार को लेकर। अब आप देखिए कि थोड़े से जो फैक्ट्स हैं हम उन्हें देख लेते हैं। ये जनवरी से नवंबर तक के व्यापार के बारे में है, है ना। जनवरी टू दिसंबर का काउंट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो जनवरी से नवंबर के बीच चीन और भारत के व्यापार में 46.4% की वृद्धि हुई। मोटे तौर पर 46% की वृद्धि हुई, व्यापार बढ़ गया, राइट। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या ऐसी बात है, तो क्या हम सारे देश के साथ जो हमारे व्यापार हो रहे हैं उनके बारे में हम जाने? दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है कि मैंने इसे क्यों इसमें लिया है, शामिल किया है। उसका कारण यह है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले लंबे समय से भारत और चीन के बीच जबरदस्त किस्म का सीमा पर तनाव बना हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत उसकी काट, आप यूं कह लीजिए कि खोजने की कोशिश में है। चीन भी भारत के साथ खुश नहीं है, भारत भी चीन के साथ खुश नहीं है, क्योंकि तनाव का कारण बिल्कुल साफ है। इसके बावजूद व्यापार बढ़ रहा है। सामान्यतया देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता प्री एग्जामिनेशन में और अगर आपने मेरी यह बात नहीं सुनी होती, अखबारों में नहीं पढ़ा होता, तो आप कैसे अनुमान लगाते? आपका अनुमान यही होता कि यार इतने समय से तो तनाव बना हुआ है और भारत में तो यहां तक हुआ कि चाइनीज का जो सामान है उसका बायकॉट भी करो। अब आप देखिए कि दीपावली पर भारत के अपने झालर लगाओ, भारत के पटाखे, इस तरह की बातें होने लगी, तो व्यापार तो कम हो गया होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? व्यापार बढ़ गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ा है और एक्सपोर्ट उस तुलना में नहीं बढ़ा है, और कुल मिलाकर के चीन के साथ हमारा जो व्यापार घाटा है वो पहले की तुलना में अधिक हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको तथ्यों को पकड़ना पड़ता है कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा डेटा में उलझने की जरूरत नहीं है, मैंने इतनी बातें आपको बता दी। अब कोई भी प्रश्न यदि इसको लेकर के तैयार किया जाएगा प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप उसे हल कर लेंगे। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात कही है, हमारे लोगों से जो शेयर की है, देखिए उसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं केवल प्री की बात कर रहा हूं। कभी कभी देखिए, मैं ये भी करता हूं कि भले ही वो सिविल सर्विस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस की दृष्टि से या दूसरे एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये भी दावा नहीं किया जा सकता कि इसमें से तो पूछा ही नहीं जाएगा सिविल सर्विस में, यह भी कहना गलत होगा। तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं जो उनके मन की बात से मुझे पता चल पाए हैं, या यूं कह लीजिए कि वहां से मैं जो पकड़ पाया हूं। एक, उन्होंने वायुसेना, जो हमारी वायुसेना, उसके आदर्श वाक्य की चर्चा की, नभः स्पृशं दीप्तम्। मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ या पूरे गर्व के साथ आसमान को इसका स्पर्श करो, दीप्ति के साथ, पूरे चमक के साथ आसमान को छुए। भारतीय वायुसेना के बिल्कुल अनुकूल आदर्श वाक्य है। तो पहला तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। ये कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहे थे, और अभी जो हमारे पायलट थे जिनका बाद में निधन भी हो गया, जिसमें बिपिन रावत जी नहीं रहे थे, उनकी प्रशंसा के दौर में प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही। दोस्तों, इसके बाद फिर उन्होंने एक चित्रकला की चर्चा की थी जो गोवा की चित्रकला है, कावी। कावी, कावी क्या है? चित्रकला है। काव का मतलब क्या होता है? लाल मिट्टी। और उसमें फिर उन्होंने नाम लिया था इसके चित्रकार का, सागर मूले। सागर मूले कावी चित्रकला के आज आप यूं कह लीजिए कि मूर्धन्य कलाकार हैं, और ये गोवा की चित्रकला है। और फिर बाद में गोवा के लोग जब बाहर दूसरी जगह पर जाने लगे तो धीरे धीरे वहां भी धीरे धीरे इस कला का विस्तार हुआ। जो कि कला साहित्य संस्कृति आपके एग्जामिनेशन में है और प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। उन्होंने एक और तथ्य की चर्चा की थी और मुझे लगता है कि कॉमन यूज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर पर्यावरण वगैरह की दृष्टि से। अरुणाचल प्रदेश एयरगन सरेंडर अभियान, इसकी चर्चा उन्होंने की। मतलब अरुणाचल प्रदेश में क्या कर रहे हैं कि जिनके पास एयर गन है वो सरेंडर कर रहे हैं। एयर गन देखिए क्या, एयर गन से आप पक्षियों को मारते हैं, तो ये अभियान चलाया गया है ताकि जो पक्षियों का शिकार होता है वो रुक सके और पक्षी जीवित रह सके, तो पर्यावरण से संबंधित है। तो इसे आप कहीं भी निबंध में उपयोग में ला सकते हैं। हो सकता है कि पर्यावरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया हो कि क्या किया जाना चाहिए इनको बचाने के लिए, तो आप इस अभियान की चर्चा कर सकते हैं। स्टेट ने कितना खूबसूरत अभियान शुरू किया है और ये जन अभियान है। दोस्तों, एक नाम आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, डेसमंड टूटू जी का। डेसमंड टूटू ये दक्षिण अफ्रीका के गांधीवादी आर्क बिशप थे और खासकर रंगभेद के खिलाफ जब नेल्सन मंडेला जी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें ये भी शामिल थे और बकायदे इनको 1984 का शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये गांधीवादी नेता थे और भारत ने भी इन्हें अपना गांधी शांति पुरस्कार दिया था। आर्क बिशप डेसमंड टूटू, इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। आज और कल के अखबारों में अलग अलग ढंग से लोगों ने लिखा है। एक टेलीस्कोप के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक जबरदस्त किस्म का टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब। याद रखिए, जेम्स वेब ये टेलीस्कोप है। दोस्तों, ये टेलीस्कोप शायद सैटरडे को छोड़ा गया है, भेजा गया है अंतरिक्ष में। इसको बनाने में लगभग 25-30 साल लग गए हैं और ये जो टेलीस्कोप है अब वो ऊपर जाकर के अंतरिक्ष में जाकर के ब्रह्मांड में जो मौजूद है, आप जानते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ब्रह्मांड में तारे हैं या गैलेक्सी आकाश गंगा हैं, खगोलीय पिंड हैं, इन सब के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा और ये देखेगा कि 25 करोड़ साल पहले जो बिग बैंग के बाद इस अंतरिक्ष का पूरा विकास हुआ है। बिग बैंग की जो थ्योरी है डेफिनेटली ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी, तो उनका विकास कैसे हुआ, आकाशगंगा कैसे बनी, इन सारी बातों का पता ये लगाने की कोशिश करेगा जेम्स वेब। यहां मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो जेम्स वेब इसका नाम रखा गया है वो बेसिकली जो अमेरिका की जो एजेंसी है नासा का नाम आपने सुना होगा, नासा, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखिए कि भारत ने इसे कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में आपको कोई समानता दिखाई दे रही है? और आप देखिए कि हमारे जो छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो इसरो ही तैयार करता है और इसकी आप यूं कह लीजिए कि नोडल एजेंसी है। नासा से खासकर ये जो टेलीस्कोप भी छोड़ा गया है ये नासा ने ही बनाया है, छोड़ा है। तो जो जेम्स वेब थे 1960 के दशक में इस नासा के प्रमुख रहे हैं, तो उनके सम्मान में इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है जेम्स वेब। डिटेल्स में अगर आप और रुचि रखते हैं तो आप अखबारों में पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आते हैं मुख्य विषय पर, सुशांक सूचकांक। गुड गवर्नेंस आपके सिलेबस में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो गुड गवर्नेंस की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। सरकार बार बार गुड गवर्नेंस का नाम लेती है जिसे हम हिंदी में सुशासन कहते हैं। शासन तो होता ही है लेकिन सुशासन, गुड की जगह सुशासन अनुवाद किया गया है जो बहुत अच्छा है। इसके बारे में भारत अब इंडेक्स जारी करने लगा है और इस इंडेक्स को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, एक तो ये है कि जो हमारे बड़े बड़े राज्य हैं वो तो है ही, राज्यों पर आधारित है। दूसरा, हमारे जो हिल स्टेशंस हैं तो डेफिनेटली हिल स्टेशंस की स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। ग्रुप बी के जो राज्य होते हैं वो अलग हो जाए, एक तो बड़े राज्य हो गए, दूसरे ग्रुप बी के राज्य हो जाते हैं, अपेक्षाकृत छोटे या पिछड़े हुए राज्य कहना चाहिए, छोटे तो नहीं कहना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया आ जाता है उसमें, और इसके बाद हिल स्टेशन हो जाते हैं, फिर यूनियन टेरिटरी हो जाती है। तो 4 इसके भाग बनाए गए हैं, चार ग्रुप बनाए गए हैं आप कह लीजिए, तो जो सूचकांक अभी आया है उसमें टॉप पर रहा है गुजरात। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तीन नाम आप याद रख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, एक क्रमशः है ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। ग्रुप बी में टॉप पर है मध्य प्रदेश। हिल स्टेशंस, या कह लीजिए हिल्स स्टेट कहना चाहिए ज्यादा अच्छा होगा, उसमें टॉप पर है हिमाचल प्रदेश। और जो यूटी कैटेगरी है, यूनियन टेरिटरी, उसमें टॉप पर है दिल्ली। ये कुछ स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताया है जो खासकर सुशासन को लेकर के अभी जारी किए गए हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उन्हें हिल स्टेट्स के अंतर्गत ही रखा गया है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यह है कि ये जो सूचकांक दिया गया है ये बेसिकली कंपोजिट के आधार, कंपोजिट रैंकिंग है। अगर हम इन सबको मिला दें तो गुजरात आता है, गुजरात टॉप पर है। और अगर अलग अलग हम देखेंगे तो फिर मैंने अभी आपके सामने बातें रखी हैं कि क्या रैंकिंग किसको मिल रही है। और इसके तहत जो क्षेत्र चुने गए हैं, सामान्य तौर पर 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और उसके तहत 58 इंडिकेटर्स हैं। 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र और उसके तहत 58 इंडिकेटर्स। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि क्या क्षेत्र हो सकते हैं, अगर हम सुशासन की बात करें क्या क्या उनके इंडिकेटर्स हो सकते हैं, इसकी लिस्ट आप अपने लेवल पर बनाने की कोशिश करें। चलिए, आपने इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा है मान लीजिए, लेकिन सोच करके देखिए कि एक सामान्य ज्ञान के तहत ही अगर मैं ये कहूं कि सुशासन के लिए किन किन क्षेत्रों में अच्छा काम होना चाहिए या किन किन क्षेत्रों को तरजीह दी जानी चाहिए, तो क्या आप बता सकते हैं? डेफिनेटली आप बता सकते हैं। आप कहेंगे भाई कि आर्थिक प्रगति होनी चाहिए, कृषि क्षेत्र अच्छा काम कर रहा हो, उद्योग अच्छा काम कर रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा काम कर रहा हो, पर्यावरण वहां अच्छा चल रहा हो, न्याय व्यवस्था ठीक हो, सड़कें और आवागमन के साधन ये सब की चीज ठीक ठाक हो, समाज कल्याण के काम बेहतर हो रहे हों, जो मानव संसाधन है उन सब का विकास हो रहा हो, अगर जनता शिकायत करती है तो उनके शिकायतों का निवारण हो रहा हो, यही सब बातें हैं। अगर ये सब ठीक है तो मतलब सुशासन है। यही इसके दोस्तों इंडिकेटर्स है। और मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप यही करने जा रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इस टॉपिक पर आपकी अपेक्षाकृत अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि सुशासन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। और इस पर बकायदे ऑनलाइन में लेक्चर्स भी हैं और किताबों में भी काफी कुछ इसका उल्लेख मिल जाता है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होंगी। इसके लिए नीतीश राज जो बांका बिहार से हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो नीतीश आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं, मुकेश कुमार मधुबनी बिहार से, रवीना राय, रोहिताश गुर्जर जयपुर से और भास्कर शर्मा जोधपुर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।